एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हम सबको कहीं ना कहीं महसूस होता है।
हाँ, मतलब एक ऐसा माहौल बन गया है जहाँ कभी कभी लगता है कि सच क्या है ये पता करना या शायद मानना भी बहुत मुश्किल हो गया है।
बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे तथ्यों के ऊपर भावनाएं हावी हो रही हैं, या फिर अपनी राय, अपनी मान्यताएं।
तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसी सवाल को समझने की कोशिश करती है ली मैकइंटायर की किताब पोस्ट ट्रूथ। आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे।
और ये आज जरूरी इसलिए भी है क्योंकि ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं रह गई है, ये हमारे समाज को, हमारी राजनीति को, हमारी रोज की बातचीत को, सबको असर कर रही है।
तो चलिए शुरू करते हैं ली मैकइंटायर और उनकी इस बहुत ही महत्वपूर्ण किताब पोस्ट ट्रूथ पर ये चर्चा।
सबसे पहले शायद यही जानना चाहें लोग कि ली मैकइंटायर हैं कौन, मतलब इस मुश्किल विषय पर वो क्यों लिख रहे हैं।
हाँ, तो ली मैकइंटायर जो हैं वो बॉस्टन यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर फिलॉसफी एंड हिस्ट्री ऑफ साइंस, वहाँ रिसर्च फेलो हैं। और उनकी खासियत ये है कि वो सिर्फ कमरे में बैठकर सोचने वाले दार्शनिक नहीं हैं।
अच्छा।
हाँ, वो विज्ञान के दर्शन मतलब फिलॉसफी ऑफ साइंस के विद्वान तो हैं ही, यानी वो ये समझते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान बनता कैसे है, उसकी क्या सीमाएं हैं।
और समाज उसे कैसे लेता है ना?
बिल्कुल। लेकिन साथ ही उन्हें विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने का मतलब साइंस कम्युनिकेशन का भी अनुभव है।
अच्छा, तो ये चीज उन्हें एक अलग नजरिया देती होगी।
हाँ, क्योंकि उन्होंने दशकों तक देखा है कि कैसे विज्ञान की बातों को, तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जाता है,
खासकर उन मामलों में जहां विज्ञान शायद किसी ताकतवर समूह के खिलाफ जा रहा हो, जैसे जलवायु परिवर्तन।
हाँ, या जैसे तंबाकू का सेहत पर असर। तो वो इस पोस्ट ट्रूथ को सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं मानते हैं, वो इसे लोकतंत्र के लिए, हमारी तर्क से बात करने की क्षमता के लिए एक असल खतरा मानते हैं।
तो अब किताब पर आते हैं, पोस्ट ट्रूथ। नाम तो लगता है जैसे सच के बाद का जमाना, पर किताब कहना क्या चाहती है? क्या ये सिर्फ झूठ बोलने के बारे में?
नहीं, मैकइंटायर कहते हैं कि ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। उनका जो मुख्य तर्क है वो ये कि पोस्ट ट्रूथ असल में एक
रणनीति किस चीज की?
इसका असली मकसद सिर्फ ये नहीं कि आपको गलत जानकारी दी जाए, बल्कि वो जो एक विचार है ना कि एक वस्तुनिष्ठ सच्चाई होती है,
ऑब्जेक्टिव रियलिटी,
मतलब ऐसा सच जो हमारी पसंद नापसंद से अलग तथ्यों पर आधारित हो।
हाँ बिल्कुल, पोस्ट ट्रूथ का मकसद उसी विचार को कमजोर करना है।
अच्छा, तो मतलब कोशिश ये है कि लोग सोचने लगें कि भाई सबका अपना अपना सच होता है।
हाँ, और कोई एक साझा तथ्यों वाला सच होता ही नहीं है, ताकि लोग फिर अपनी मर्जी से, अपनी भावना या अपनी विचारधारा के हिसाब से अपना सच चुन लें।
बिल्कुल, चाहे वो तथ्यों से मेल खाए या ना खाए। और मैकइंटायर ये भी कहते हैं कि ये सब अचानक नहीं हुआ है, इसके पीछे एक इतिहास है, खासकर उन ताकतों का जिनके लिए शायद वैज्ञानिक तथ्य असुविधाजनक थे,
हाँ, जैसे तंबाकू लॉबी ने सालों तक सिगरेट के खतरों पर शक बनाए रखा,
या जैसे जीवाश्म ईंधन कंपनियों ने जलवायु परिवर्तन के विज्ञान पर सवाल उठाए।
सही कहा। तो किताब यही बताती है कि वो तरीके कैसे अब राजनीति में, समाज के दूसरे हिस्सों में इस्तेमाल हो रहे हैं, ये हमें उन्हें पहचानने में मदद करती है।
तो थोड़ा और अंदर चले, किताब के अलग अलग हिस्सों में क्या है। शुरुआत में ही मैकइंटायर पोस्ट ट्रूथ को झूठ से अलग बताते हैं, क्या फर्क है दोनों में?
हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो झूठ बोलता है वो सच जानता है, पर वो जानबूझकर उसे छुपाता है या बदल देता है। लेकिन पोस्ट ट्रूथ में सच क्या है इससे जैसे फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, मतलब सच की परवाही नहीं।
हाँ, एक तरह की उदासीनता है, बेपरवाही। जोर इस पर नहीं कि सच क्या है, जोर इस पर है कि मेरी बात सुनी जाए, मेरी विचारधारा सही लगे या मैं अपने ग्रुप के साथ दिखूं।
तो भावनाएं और पहचान ज्यादा जरूरी हो जाती हैं तथ्यों से।
बिल्कुल, यही पॉइंट है।
और इसकी जड़ें क्या, ये आजकल की बात है? किताब दूसरे अध्याय में इस पर बात करती है।
हाँ, मैकइंटायर कुछ कनेक्शंस तो अकादमिक बहसों में भी देखते हैं, जैसे पोस्ट मॉडर्न फिलॉसफी में ये विचार आया कि हर ज्ञान किसी नजरिए से जुड़ा होता है।
लेकिन वो ये भी कहते हैं कि उन विचारों का गलत इस्तेमाल हुआ है ना?
सही कहा, वो साफ करते हैं कि अकादमिक बहस का मकसद ज्ञान की सीमाओं को समझना था, ये कहना नहीं था कि कोई असली सच होता ही नहीं।
और इस गलत मतलब का फायदा फिर उन लोगों ने उठाया जो तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना चाहते थे।
बिल्कुल, और यहीं पर वो तंबाकू और जीवाश्म ईंधन कंपनियों के उदाहरण देते हैं।
हाँ, कि कैसे उन्होंने दशकों तक पैसा खर्च करके वैज्ञानिक सहमति पर शक पैदा करने की पूरी मुहिम चलाई।
उनकी रणनीति ही यही थी, संदेह हमारा प्रोडक्ट है, शक पैदा कर दो ताकि लोग कुछ करें ही नहीं। और यहीं से किताब शायद अपने सबसे दिलचस्प हिस्से में आती है, अध्याय 3, विज्ञान इनकार, पोस्ट ट्रूथ का रोड मैप।
हाँ, मैकिन्टायर का ये तर्क बहुत दमदार है कि पोस्ट ट्रूथ की लगभग सारी तकनीकें, सारे तरीके पहले विज्ञान के मैदान में आजमाए जा चुके हैं।
जैसे कौन कौन से तरीके, कुछ उदाहरण दे सकते हैं?
हाँ, कई हैं। जैसे एक है चेरी पिकिंग।
चेरी पिकिंग मतलब
सिर्फ वो आंकड़े या सबूत चुन लेना जो आपकी बात को सही साबित करें, और बाकी सब जो उसके खिलाफ जाते हों उन्हें नजरअंदाज कर देना।
अच्छा, और
फिर है नकली विशेषज्ञ खड़े करना। ऐसे लोगों को एक्सपर्ट की तरह पेश करना जो या तो असली एक्सपर्ट है ही नहीं या उनका कोई अपना स्वार्थ है उस मामले में।
ये तो देखा है कई बार। पर विज्ञान में जो थोड़ी बहुत अनिश्चितता होती है, क्योंकि ज्ञान बदलता रहता है,
हाँ,
उसको बढ़ा चढ़ाकर ऐसे पेश करना जैसे कि कुछ भी पक्का नहीं है, सब हवा में है।
अच्छा, और मीडिया का भी रोल है इसमें।
हाँ, वो कहते हैं झूठा संतुलन बनाना। मतलब मीडिया में किसी मुद्दे पर मान लीजिए 99% एक्सपर्ट एक तरफ है और 1% दूसरी तरफ,
तो दोनों को बराबर जगह दे देना संतुलन के नाम पर।
बिल्कुल, इससे लगता है जैसे बहस 50-50 की है, जबकि असल में ऐसा नहीं होता। और फिर है साजिश की कहानियां गढ़ना कि वैज्ञानिक या संस्थाएं किसी गुप्त एजेंडे पर काम कर रही हैं।
अरे बाप रे, ये तो वाकई एक पूरी प्लेबुक लगती है।
हाँ, और किताब यही दिखाती है कि कैसे यही प्लेबुक अब राजनीति में बाकी जगहों पर धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रही है।
अगले अध्यायों में फिर वो मीडिया और राजनीति पर आते हैं। पारंपरिक मीडिया के जो सिद्धांत थे, जैसे निष्पक्षता, उनका कैसे गलत फायदा उठाया गया।
और फिर सोशल मीडिया, उसने तो जैसे आग में घी का काम किया।
हाँ, वो इको चेम्बर और फिल्टर बबल वाली बात। ये शब्द आजकल बहुत सुनने में आते हैं।
क्या मतलब है इनका? इको चेम्बर मतलब एक ऐसा कमरा जहां आपकी अपनी ही आवाज गूंजती रहे।
हाँ, कुछ वैसा ही। ऑनलाइन ऐसी जगहें जहां हमें सिर्फ वही जानकारी और विचार दिखते हैं जिनसे हम पहले से सहमत होते हैं।
और फिल्टर बबल?
वो एक अदृश्य बुलबुला है जो हमें अलग अलग विचारों से दूर रखता है। हमें पता भी नहीं चलता कि दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है। इससे हमारी सोच एक दायरे में बंध जाती है
और गलत जानकारी बहुत तेजी से फैलती है फिर।
बिल्कुल, और फिर आती है राजनीति। किताब बताती है कि कैसे पोस्ट ट्रूथ अब सिर्फ बातों को घुमाना फिराना नहीं रहा, ये एक राजनीतिक रणनीति बन गया है।
और इसमें हमारे दिमाग की कुछ कमजोरियों का भी फायदा उठाया जाता है ना,
जैसे वो कन्फर्मेशन बायस।
हाँ, कन्फर्मेशन बायस मतलब हमारे वो आदत कि हम उन बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, उन्हें ज्यादा सच मानते हैं जो हमारे पहले से बने हुए विचारों से मेल खाती हैं, पहले से मानते हैं।
सही कहा।
और पोस्ट ट्रूथ इसी का खूब फायदा उठाता है।
लेकिन क्या किताब सिर्फ समस्या ही गिनाती रहती है या कोई रास्ता भी सुझाती है?
नहीं, अच्छी बात यह है कि आखिरी अध्याय समाधानों पर है। मैकिन्टायर नाउम्मीद नहीं है, वो जोर देते हैं वास्तविकता आधारित संचार पर,
रियलिटी बेस्ड कम्युनिकेशन।
इसका क्या मतलब हुआ?
मतलब ये कि तथ्यों पर टिके रहना तो जरूरी है, लेकिन सिर्फ तथ्य सामने रख देने से काम नहीं चलेगा।
अच्छा, तो और क्या करना होगा?
हमें लोगों की भावनाओं को, उनके डर को, उनकी चिंताओं को भी समझना होगा, उन्हें एड्रेस करना होगा।
मतलब सिर्फ ये बताना काफी नहीं कि सच क्या है, बल्कि ये भी कि ये क्यों जरूरी है, और लोगों की आपत्तियों को भी सुनना।
बिल्कुल। इसके अलावा वो संस्थागत सुधारों की भी बात करते हैं।
जैसे?
जैसे शिक्षा में आलोचनात्मक सोच, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना, पत्रकारिता के जो स्टैंडर्ड हैं उन्हें मजबूत करना, राजनीति में ज्यादा जवाबदेही लाना,
ताकि सच और सबूतों की कीमत समाज में फिर से बढ़े।
हाँ, बिल्कुल।
तो अगर इस पूरी बातचीत से कुछ मुख्य बातें निकालनी हो, मेरे लिए तो पहली और सबसे जरूरी बात यही है कि पोस्ट ट्रूथ सिर्फ झूठ नहीं है, बल्कि सच के प्रति एक उदासीनता है, और ये अक्सर जानबूझकर फैलाई जाती
है। हाँ, ये जानना कि ये एक रणनीति है, ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो मुझे बहुत अहम लगी वो ये कि इसकी जड़ें विज्ञान को नकारने के इतिहास में हैं।
वो तंबाकू और तेल कंपनियों वाले तरीके हैं ना?
हाँ, वही तरीके आज हर तरफ दिख रहे हैं। ये पैटर्न पहचानना जरूरी है।
तीसरा, कि ये हमारी दिमागी कमजोरियों का फायदा उठाता है।
हाँ,
हम सब अपनी मान्यताओं से जुड़े रहना चाहते हैं।
पोस्ट ट्रूथ हमारी भावनाओं को या तो भड़काता है या उन्हें सहलाता है, ताकि हम तथ्यों को नजरअंदाज कर दें।
भारत में व्हाट्सएप पर ये कितना देखते हैं हम। हाँ, है ना, भावनात्मक कहानियां ज्यादा चलती हैं।
बिल्कुल।
चौथा, मीडिया, खासकर सोशल मीडिया ने इसे फैलाने में बड़ी भूमिका निभाई है, भले ही अनजाने में वो इको चेम्बर और फिल्टर बबल वाली बात, हमें अपनी ऑनलाइन दुनिया को थोड़ा खोलना होगा।
और पांचवा जो बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सिर्फ तथ्यों पर हमला नहीं है बल्कि सच जानने और बताने वाली जो संस्थाएं हैं जैसे विज्ञान, अच्छी पत्रकारिता, शिक्षा, उन पर भी हमला है।
हाँ, उनके भरोसे को कम करने की कोशिश है।
इसलिए इसका मुकाबला सिर्फ व्यक्तिगत नहीं हो सकता, संस्थागत भी होना चाहिए। हमें संस्थाओं को बचाना होगा।
किताब में कुछ बातें ऐसी हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। जैसे मैकिंटायर कहते हैं, पोस्ट ट्रूथ केवल झूठ बोलना या गलत होना नहीं है, ये सत्य के प्रति उदासीनता है। ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं हम भी तो ऐसा नहीं करते कभी कभी।
हाँ, और एक और बात, पोस्ट ट्रूथ की पहचान ये है कि ये सबूतों की परवाह नहीं करता, ये सत्य को विचारधारा के अधीन कर देता है। मतलब पहले एजेंडा तय होता है, फिर उसके हिसाब से सच बनाया जाता है।
तथ्य बाद में आते हैं या आते ही नहीं।
और विज्ञान इनकार पर उनकी ये बात, विज्ञान इनकार विशेष वैज्ञानिक दावों को अस्वीकार करने के बारे में नहीं है, बल्कि स्वयं वैज्ञानिक पद्धति के अधिकार को कमजोर करने के बारे में है।
मतलब हमला सिर्फ नतीजे पे नहीं बल्कि नतीजे तक पहुंचने के पूरे तरीके पर है। ये बहुत गहरी बात है।
और ये देखिए आज कितना सच लगता है, पोस्ट ट्रुथ दुनिया में भावनाओं का महत्व तथ्यों से अधिक होता है।
हाँ, भावनात्मक अपील अक्सर तर्क पर भारी पड़ती है।
और अंत में उनकी चेतावनी, सत्य की लड़ाई सिर्फ एक बौद्धिक लड़ाई नहीं है बल्कि स्वयं लोकतंत्र के लिए एक लड़ाई है।
क्योंकि अगर सच का कोई साझा आधार ही नहीं रहेगा तो समाज चलेगा कैसे, लोकतंत्र कैसे काम करेगा? ये वाकई एक बड़ा सवाल है।
तो फिर सवाल ये उठता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करें, इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करें?
मेरे ख्याल से पहला कदम तो यही है कि हम जो भी पढ़ते, सुनते, देखते हैं उसके प्रति थोड़े सजग हो जाएं।
मतलब थोड़ा रुक कर सोचें।
हाँ, खासकर जब कोई चीज हमें बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से छू जाए, चाहे गुस्से में, खुशी में, या जो हमारे विचारों से पूरी तरह मेल खाती लगे,
तो रुक कर पूछें कि ये आ कहां से रहा है, स्रोत क्या है।
बिल्कुल, क्या ये स्रोत भरोसेमंद है? क्या यही बात कहीं और भी कही जा रही है? इसे हम सूचना स्वच्छता या इन्फॉर्मेशन हाइजीन कह सकते हैं।
स्रोत की जांच बहुत जरूरी है। क्या ये कोई जानी मानी संस्था है या कोई अनजान व्हाट्सएप फॉरवर्ड? सिर्फ हेडलाइन देखकर भरोसा ना करें।
और वो जो कन्फर्मेशन बायस की बात हुई थी, उसके बारे में भी हमें खुद से ईमानदार होना पड़ेगा।
हाँ, ये मानना मुश्किल है पर हम सब पर इसका असर होता है। हमें जानबूझकर ऐसे विचार भी देखने चाहिए जो हमें चुनौती देते हों।
और जब हम दूसरों से बात करें, खासकर उनसे जो शायद किसी गलत जानकारी पर यकीन कर रहे हों।
किताब का सुझाव है कि सिर्फ तथ्यों की लिस्ट गिनाने से शायद काम न बरे,
उससे वो और अड़ सकते हैं।
हाँ, उसे बैकफायर इफेक्ट कहते हैं। शायद बेहतर तरीका है कि पहले इज्जत से उनकी बात सुने, उनकी चिंता समझें,
फिर धीरे धीरे सवालों के जरिए उन्हें सोचने पर मजबूर करें। विश्वास बनाना शायद पहला कदम है।
बिल्कुल, और बड़े स्तर पर हम अच्छी स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन कर सकते हैं।
उन मीडिया आउटलेट्स को सपोर्ट करें जो गहराई से पड़ताल करते हैं।
हाँ, और मीडिया साक्षरता यानी मीडिया लिटरेसी को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। लोगों को सिखाना कि मीडिया के संदेशों को कैसे समझें, कैसे उनका विश्लेषण करें,
ये स्कूलों में भी होना चाहिए और समाज में भी।
तो इस पूरी बातचीत से मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई वो ये कि पोस्ट ट्रूथ कोई अचानक आई हुई चीज नहीं है। ये अक्सर एक सोची समझी कोशिश होती है। ये जानना हमें थोड़ा ज्यादा सावधान करता है।
हाँ, और ये भी कि हमें हार मानने की जरूरत नहीं है, हम इसके असर को कम कर सकते हैं। मेरे लिए ये जानना जरूरी था कि इसकी जड़ें विज्ञान इनकार में कितनी गहरी हैं, वो पैटर्न अब साफ दिखता है।
और ये भी कि हम अकेले नहीं हैं, हम व्यक्तिगत स्तर पर और मिलकर संस्थागत स्तर पर भी सच के लिए खड़े हो सकते हैं। ये सिर्फ कोई दिमागी बहस नहीं है, ये हमारे समाज के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है।
शायद सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम खुद कितने तैयार हैं अपने पूर्वाग्रहों का सामना करने के लिए और सच को स्वीकार करने के लिए, भले वो हमें पसंद ना आए।
ये सोचने वाली बात है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।